ओम शांति। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 1985। अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात 16 जनवरी 1985। कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है तो ब्रह्मा कुमार अर्थात रूहानी सब शक्तिशाली, जिस्मानी शक्तिशाली नहीं रूहानी शक्तिशाली। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो। तो आप सब कुमारों ने अपने इस कुमार जीवन में अपना वर्तमान और भविष्य बना लिया। क्या बनाया? उच्च बनाया। और क्या बनाया? श्रेष्ठ, उच्च, महान। क्या बनाया अपने जीवन को? इस जीवन में वर्तमान और भविष्य क्या बना दिया? अविनाशी बना दिया। बाबा कह रहे रूहानी बनाया, ईश्वरीय जीवन वाले ब्रह्मा कुमार बने तो कितने श्रेष्ठ जीवन वाले हो गए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई जो सदा के लिए दुख से और धोखे से और भटकने से किनारा हो गया। कितनी श्रेष्ठ जीवन हो गई जो दुख से धोखे से भटकने से। नहीं तो जिस्मानी शक्ति वाले कुमार भटकते रहते, लड़ना झगड़ना दुख देना धोखा देना यही करते हैं ना। तो कितनी बातों से बच गए हो। जैसे स्वयं बचे हो अब क्या करो, वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। सदा हम जीन्स को बचाने वाले, जो शक्तियां मिली है वह औरों को भी दो। अखूट शक्तियां मिली है ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। फिर कहा निमित्त समझकर सेवा करो, मैं सेवाधारी हूं। कहना है कैसा? नहीं, बाबा कराता है, मैं निमित्त हूं। मैंपन वाले नहीं, जिसमें मैंपन नहीं वह सच्चे सेवाधारी। 16 जनवरी 1985 कुमारों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा। कुमार जीवन कैसा है? शक्तिशाली जीवन है तो ब्रह्मा कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली, जिस्मानी शक्तिशाली नहीं रूहानी शक्तिशाली जीवन, परिपक्व जीवन। परिपक्वता का साधन क्या है मंजू बहन? अगर पुरुषार्थ पूर्ण किया है परंतु फिर भी सफलता दिखाई नहीं दे रही है। पुरुषार्थ पूर्ण किया परंतु सफलता दिखाई नहीं दे रही, इसे असफलता नहीं समझना। क्या समझना? परिपक्वता का साधन, परिपक्वता, सक्षमता, कुशलता, निपुणता। तो जिस्मानी शक्तिशाली नहीं कौन हो तुम? रूहानी शक्तिशाली। कुमार जीवन में जो चाहे वह कर सकते हो। पावर इतनी ज्यादा है निखिलेश भाई, क्या करूं और क्या नहीं, किसको हिला दूं और किसको क्या करूं। तो आप सब कुमारों ने अपने इस कुमार जीवन में अपना वर्तमान और भविष्य बना लिया। ये जीवन गिराने वाली भी है तो चढ़ाने वाली भी है। अपने भाग्य को, कुमारियों को अपने भाग्य को देखकर हर्षित होना है कि इस जीवन में बाप की बन गई, रूहानी बनाया। क्या बनाया? रूहानी, ईश्वरीय जीवन वाले ब्रह्मा कुमार बने तो कितने श्रेष्ठ जीवन वाले हो गए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई जो किस किस से छूट गए? किससे बच गए? दुख से बच गए। से, और किससे बच गए अर्जुन भाई? किससे बच गए कुमार जीवन में? किससे? लड़ाई झगड़ने से, बरबर बोला। तो दुख से बच गए, धोखे से बच गए, और भटकने से किनारा हो गया। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक है धोखा देने वाले, एक है धोखा खाने वाले। एक है धोखा खाने वाले, एक है धोखा देने वाले। कौन बनना है दोनों में से? कमलेश भाई, कौन बनना है, धोखा देने वाले कि धोखा खाने वाले? धोखा खाने वाले जो है, हिंदी में कहावत है, धोखा खाने वाले जो है वो ठोकर खाने वाले ठाकुर बन जाते हैं, और ठोकर दिलाने वाले रास्ते के पत्थर रह जाते हैं। ऐसी कहावत है। तो दुख से बच गए, दुख से भरा पड़ा है संसार, अंबार लगे हैं दुखों के, यहाँ पर धोखे हैं। वो तो हमने कहा ही नहीं, हमने तो कहावत सुनाकर छोड़ दिया। तो हमने पूछा है दो में से क्या करना है, तो ऐसा बोला ही नहीं किसी ने ना। दोनों को साक्षी होकर देखने वाले। तो दुख से छूट गए और धोखे से छूट गए और भटकने से किनारा हो गया। धोखे से भी छूट गए, परंतु धोखा देने वाला जो है वो और होशियार हो जाता है। एक बार किसी ने हमको धोखा दिया, हम सीख गए अब, ठीक है? माया ने एक बार धोखा दिया, हम सीख गए, तो अगली बार माया और होशियार हो जाती है। ऐसे नहीं कि वो वही उसी मार्ग से और उसी विधि से हमको धोखा दे। धोखा देने वाले अपनी नई नई चाल चलते रहते हैं, टेक्निक्स इजाद करते रहते हैं, नई नई तकनीक। जैसे कहानी सभी ने सुनी है, ऐसा शायद ही कोई होगा, उस सौदागर की कहानी जो कि टोपिया बेचता था और जंगल में चला गया, झाड़ के नीचे सोने लगा। तो झाड़ पर क्या थे? बहुत सारे बंदर थे, और सब बंदरों ने क्या कर दिया? उसकी टोपी ले ली। वो जब उठा तो देखा कि सारी टोपियां बंदरों के सिर पर है। तो उसने क्या किया? ये कहानी सुनी है ना सभी, पर कहानी अधूरी है, आगे की अभी आज सुनाएंगे आपको। तो उसको पता था बंदर नकलची होते हैं, अनुकरण करता। तो उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी, तो सारे बंदरों ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी और उसे अपनी टोपी मिल गई, पर कहानी अधूरी है। अब सौदागर मर गया, फिर उसका बेटा हुआ, वो फिर सौदागर बना, फिर उसने टोपियों का व्यापार चालू किया, और फिर वो भटकते भटकते एक दिन उसी पेड़ के नीचे आया और उसे भी नींद लग गई, और सारे बंदरों ने उसकी टोपियां ले ली। फिर उसे अपने बाप की कहानी याद आई कि मेरे बाप ने भी ऐसा किया था, अपनी टोपी निकालकर नीचे फेंक दी थी। तो उसने भी अपनी टोपी निकालकर नीचे फेंक दी, एक बंदर आया और वो टोपी लेकर भी चला गया। क्योंकि बंदर तो सीख चुके थे ना, ऐसे ही थोड़ी ना हर बार वही गलती करेंगे, वो भी तो नया नया करेंगे ना कुछ, वो भी परिपक्व हो गए ना, कुशलता निपुणता दक्षता उनमें भी आ गई, वो मैच्योरिटी स्किल्स उनमें भी आ गई। तो धोखा देने वाले भी हमेशा एक ही रीति से धोखा नहीं देते, अलग अलग रीति से धोखा देंगे। फिर उसने क्या किया? उधार ज्ञान हमेशा ही सफल नहीं होता। फिर उसने क्या किया, उसकी कहानी आप बना बता अगली बार
आगे बना लेंगे।
क्या कर सकते हैं? दुख से छूट गए, धोखे से छूट गए, भटकने से छूट गए, किनारा हो गए। नहीं तो जिस्मानी शक्ति वाले कुमार भटकते रहते। और अशोक भाई क्या क्या करते रहते हैं जिस्मानी शक्ति वाले? लड़ाई झगड़ा करते हैं, और क्या करते हैं? भूल गए। लड़ना, झगड़ना, दुख देना, धोखा देना, डैश डैश डैश, यही करते हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं कि यही करते हैं ना, तो कितनी बातों से बच गए। जैसे स्वयं बचे, वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। पूरे बचे हैं या अभी भी थोड़ी संभावना है? जिन्हें विश्वास है कि हम पूर्ण रीति से बच गए, जो अभी भी खुद को बचाने में लगे हैं कि अभी भी पैर फिसल सकता है, अभी भी गिर सकते हैं, वो कैसे बचाएंगे दूसरों को? कदम कदम पर सावधानी, कल की मुरली में था ना, कदम कदम पर सावधानी, कदम कदम पर श्रीमत प्रमाण, कदम कदम सोच समझ कर। तीन शब्द थे। हर कदम रखने से समय बहुत कम है, गफलत का समय नहीं है। अब तुम्हें ऊंची स्टेज पर बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे स्वयं बचे हो, वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। सदा हम जींस को बचाने वाले, सदा सबको बचाने वाले, हम जींस को बचाने वाले। जो शक्तियां मिली है वह औरों को भी दो। अखूट शक्तियां मिली है ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। कैसे बनाएंगे सबको शक्तिशाली? केवल ज्ञान सुनाने से? नॉलेज की लाइट और माइट से। नॉलेज की लाइट और माइट से। हर कर्म ज्ञान स्वरूप हो। हर कर्म कैसा हो? ज्ञान स्वरूप। तो औरों को भी अखूट शक्तियां मिली हुई है, औरों को भी शक्तिशाली बनाओ, औरों को भी शक्तियां दो। केवल ज्ञान नहीं सुनाना, परंतु जिसे ज्ञान सुना रहे उन्हें साथ साथ शक्तियां भी भरनी है उनमें। दादी जानकी ने कभी सुनाया था कि बाबा ने एक बार उनको बीकानेर भेजा रॉयल फैमिली की सेवा करने के लिए। बीकानेर रॉयल फैमिली, वहां पर मदर क्वीन, क्वीन मदर क्या कहते हैं उसे, रानी माँ, रानी माँ, राजमाता। हाँ, रानी माँ या राजमाता, जहां पर राजमाता थी तो वहां बीकानेर भेजा। तो दादी जानकी वहां पर गई उस राजमाता की सेवा में। तो उसके पास तो जितने मिलने आते थे वो सारे ऐसे ही अलग रीति से मिलने आते थे, कोई ना कोई चाहना लेके, कोई ना कोई कामना लेके, कोई ना कोई मांग और कोई ना कोई गुहार और पुकार और कोई कंप्लेंट लेकर। तो दादी से उसने पूछा कि तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? तो उसने कहा कि मैं ज्ञान की सुंदर सुंदर बातें आपको बताने आई हूँ, या ज्ञान की सुंदर सुंदर कहानियां आपको सुनाने आई हूँ। तो उसको बहुत इंटरेस्ट हुआ, ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि जो ये बातें सुनाने मुझे आए? यहाँ तो सारे अलग प्रकार के लोग आते हैं, चाटुकार। तो उन्होंने उसके साथ बातें की और उस राजमाता को वो बहुत पसंद आया। दादी वापस आई, शाम का योग चालू था। शाम के योग के बाद बाबा ने दादी से पूछा कि क्या कर रही हो? दादी ने कहा, याद कर रही हूँ, आपको याद कर रही हूँ और शिव बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा ने फिर से पूछा, क्या कर रही हो? उसने कहा, आपको याद कर रही हूँ और शिव बाबा को याद कर रही हूँ। तब बाबा ने कहा उससे कि अभी अभी तुम जिसकी सेवा कर कर आई हो, अभी अभी जिसको ज्ञान सुना कर आई हो, केवल ज्ञान सुनाना पर्याप्त नहीं, ज्ञान सुनाने के तुरंत बाद उस आत्मा को इमर्ज कर, उसे सकाश दो, उसे लाइट और माइट दो, तब वह सेवा फलीभूत होगी। नहीं तो केवल ज्ञान सुनाना सेवा को फलित नहीं करता। सेवा का फल तब आएगा जब आत्माओं को ज्ञान के साथ साथ क्या करना है, शक्तियां भी देनी है। जिन जिन को हम ज्ञान सुनाएं, ज्ञान देते देते ही, ज्ञान सुनाते सुनाते ही, या फिर बाद में, क्या करना है, इमर्ज करके शक्तियां देनी है आत्माओं को। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे स्वयं बचे हो वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। सदा हम जीन्स को बचाने वाले, जो शक्तियां मिली है वह औरों को भी दो। कल कुमारियों को कहा ना बाबा ने, परिवार कल्याणी नहीं, क्या करना है, विश्व कल्याणी, परिवार कल्याणी, एक के कल्याणी बनना बहुत सहज है। इस यज्ञ में दो ऐसे उदाहरण हैं, अति मेधावी और अति बुद्धिशाली, एक तो मम्मा और दूसरे जगदीश भाई। अगर दो आत्माएं, जगदीश भाई का ये उदाहरण ले लो, अगर ये आत्मा अगर संकल्प करती कि मुझे संसार में कुछ प्राप्त करना है, तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी, ऐसी प्रतिभावान, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर संसार की ओर जाता था तो न मालूम कहां से कहां पहुंच जाता था, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त हो जाती थी, इतनी बुद्धि थी। कोई भी परीक्षा दे दो उसमें उत्तीर्ण तो हो ही जाना था, या फिर साहित्य के जगत में कितना बड़ा लेखक बन सकता था वही व्यक्ति, कितना बड़ा साहित्यकार बन सकता था, उस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकता था, परंतु अपनी सारी प्रतिभाओं को उस ओर ना लगाकर इस ओर लगाया। वहां अगर लगाता था तो शायद केवल एक समाज, एक राज्य, एक देश का होता, परंतु अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को ईश्वरीय सेवा में लगाया तो उससे विश्व का कल्याण हुआ, परमात्मा के कार्य में मदद हुई। कितना बड़ा भाग्य है ये, एक तो ये, दूसरा मम्मा। मम्मा भी कोई कम मेधावी नहीं थी, उसकी बुद्धि भी बहुत अधिक थी, केवल यही बुद्धि अगर संसार के कार्यों में लग जाए तो वहां पर भी बहुत आगे जा सकती है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे साइंस या रिसर्च या कहीं पर भी, परंतु यहां पर लगाई तो वहां लगाना, अर्थात लौकिक कार्यों में लगाना, अर्थात केवल एक का या एक दो का कल्याण करना, यहां सकल विश्व का कल्याण करना है, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करना है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे स्वयं बचे हो वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। जो फंसे हुए हैं, कीचड़ में फंसे हुए, उनको निकालना है बाहर। सदा हम जीन्स को बचाने वाले, जो शक्तियां मिली है वो औरों को भी दो। अखूट शक्तियां मिली है ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। अभी यहां दूसरा पॉइंट है, निमित्त समझकर सेवा करो। मैं सेवादारी हूं, नहीं, बाबा कराता है, मैं निमित्त हूं, मैंपन वाले नहीं। जिसमें मैंपन नहीं है वही कौन है, सच्चे सेवाधारी है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है सेवाओं के क्षेत्र में। जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती जाती है वहां पर मैं भी बढ़ते जाता है, मैं की परिपुष्टि होती है वहां पर। सेवाओं में मैं बड़ा ही खुश होता है। जब सेवाएं होती है तब क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है। इस प्रशंसा में न मालूम कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो सब को इतना अच्छा लगते हैं, कौन से प्रोटीन्स और कौन से विटामिन्स और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स इस प्रशंसा में है, जो कि हर एक चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। उसमें पता नहीं कौन से मसल्स शरीर के शक्तिशाली होते हैं। मन के अहंकार बड़ा ही संतुष्ट होता है, बड़ा ही रस आता है उसमें। अहंकार की जब तृप्ति होती है तो परम रस का अनुभव होता है आत्मा को, और इसके लिए और करना चाहता है, फिर और करना चाहता है, परंतु वो क्या है, सिंगल चाबी, वो डबल चाबी नहीं है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, करा सकता हूं, बाप ने मुझे मालिक बना दिया, बाप ने हमें ही निमित्त बना दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये क्या है, सिंगल चाबी, उल्टा नशा, बाप के संबंध को भूलना, बिना बाप के सहयोग के और बिना बाप के साथ के और बिना बाप के याद के खजाने का अनुभव कर नहीं सकते। तो सिंगल चाबी नहीं लगानी है, सिंगल से इतनी होती तो डबल से कितनी होगी, तो डबल चाबी लगानी है, उल्टी चाबी नहीं लगानी है, सुलटी चाबी लगानी है, खंडित चाबी नहीं अखंड चाबी लगानी है। तो निमित्त समझ कर सेवा करो, आज हम कर रहे हैं, हो सकता है आज हम हट जाए, कोई और आ जाए, इसके लिए किस बात का अहंकार, निमित्त समझ कर सेवा करो, मैं सेवाधारी हूं यह भी नहीं, इसमें भी मैं है, मैं सेवाधारी हूं, मैं सेवा करता हूं, मेरी ये सेवा बहुत अच्छी सेवा है, मेरे जैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता, बाबा कराता है, मैं निमित्त हूं, मैंपन वाले नहीं। ये तो सबसे सूक्ष्म है, इस अध्यात्म जगत में काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, बच गया फिर मैं, मैंने जीता सब कुछ, मैं कोई कम हूं क्या, सब कुछ मैंने जीता है, ये अहंकार। परमात्मा के द्वार में जो ताला ताला लगा हुआ है वो मैं का ताला लगा हुआ है, हमारी ओर से, उसने तो कल कह दिया मेरी ओर से कोई ताला नहीं है, ताले जो है वो तुम्हारी ओर से लगे, वो पांच ताले, मेरे कोई ताले नहीं है, परंतु सबसे बड़ा ताला जो लगा हुआ है वो है मैं का ताला। जब मैं गिर जाएगा तभी ये प्रेम, ये परमात्मा का द्वार खुलेगा, जब तक मैं नहीं गिरता तब तक ये द्वार बंद है। किसी एक सूफी संत के घर उसका ही एक अपना मित्र आया बचपन का, नहीं अपना बचपन का एक मित्र आया, उसने कहा खटखटखट, दरवाजा खटखटाया और कहा, अंदर से आवाज आई, कौन है? उसने कहा मैं हूं। फिर आवाज आई, कौन है? उसने कहा मैं हूं, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा मित्र, मैं हूं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, चुप, सन्नाटा, मौन। फिर उसने खटखटाया, अरे खोलो मैं हूं। अंदर से आवाज आती, ये कौन मूर्ख है जो कह रहा है कि मैं आया हूं? मैं कहने का अधिकार केवल एक परमात्मा को है, उसके अतिरिक्त मैं कह ही नहीं सकता है कोई। जहां मैं है वहां वो द्वार बंद है, वो ताला वहां पर लगा हुआ है। सूफियों में कहते हैं कि मैं केवल वो एक ही कह सकता है, और किसी को मैं कहने का अधिकार ही नहीं है। बड़े ही अद्भुत लोग थे ये सूफी और ये बाउल फकीर, इस तरह के ये लोग थे, मगन रहते थे, किसी धर्म को नहीं मानते थे, किसी जाति के नहीं थे, किसी सांप्रदाय के नहीं थे, अपने आप में मगन अवस्था में थे, मैं को मिटाने पर लगे हुए थे, फकीरों जैसे दिखते थे। मैं कभी उनके मुख से नहीं निकलता था, दादी के मुख से भी कभी मैं किसी ने नहीं सुना होगा, थर्ड पर्सन में बात करते थे दादी। दादी को संकल्प आता है कि, दादी का यह विचार है कि मैं वहां खो गया था, मैं खो जाना, मैं लय हो जाना, मैं विसर्जित हो जाना, मैं गिर जाना, अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। जहां वो हो जाए उसके आगे और कोई अवस्था नहीं है। निमित्त समझकर सेवा करो, मैं सेवाधारी हूं यह भी नहीं, हम कुछ है ही नहीं, हम है कौन? कुछ भी तो नहीं, क्या है हमारे पास? सभी उसी की दया कृपा और आशीर्वाद है। भक्ति के शब्द है पर इनसे, इनके अतिरिक्त तो कोई शब्द भी नहीं है। अगर उसकी दया और उसकी कृपा और उसकी आशीर्वाद नहीं होती तो आज हम यहां पर भी बैठे नहीं होते, मधुबन के इस आंगन में। यहां पर आना, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ के बारे में सोचना, जीवन को दिव्य बनाने के बारे में सोचना, ये सब संकल्प भी हमारे मन में उत्पन्न हो रहे क्योंकि उसकी दया कृपा और आशीर्वाद है। आज ब्राह्मणों की क्या हालत है देखो, ब्राह्मणों की ही देखो। एक सुनानी तो नहीं चाहिए परंतु हमारे ओपीडी में परसों एक बहन आई थी, सेंटर की समर्पित बहन, और जो बातें उसने कही आज तक हमारे, हमने ऐसी बातें कभी ना सुनी ना कभी देखी, ऐसी बातें उसने कही, इतनी बोल्ड। उसने कहा मैं वो सोती हूँ 10 बजे, उठती हूँ दूसरे दिन 12 बजे। ज्ञान योग, ज्ञान योग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुरली सुनी तो सुनी, नहीं तो मुझे कोई करना नहीं है। मैं तो सोचती भी हूँ कभी कभी ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दूँ, ऐसी 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 बातें वो कर रही थी। परंतु मेरी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती, तू जैसी है वैसी रहे, ऐसी ही रहे। हमने कहा तुमको कुछ तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है, बस यही करती हूँ। कोई सेवा, सेवा में गए तो गए, नहीं तो नहीं गए। भोजन दोपहर में 3 बजे एक ही बार, क्योंकि बाद में तो सोना ही होता है, और बाद में भी वहां पर भी नींद आती रहती है और उदासी रहती है। इतनी उदासी रहती है कि ऊपर से तो हंसती हूँ पर अंदर से उदास हूँ, इसके लिए सो जाती हूँ। और सो तो ऐसे सोती हूँ, जब भी नीचे आती हूँ शांतिवन में तो हमेशा एक बहन को साथ में लाती हूँ, दीदी एक छोटी बहन भेजती है, वो सारा कुछ करेगी, मैं सोती हूँ। जब तक 12 बजे भी मुझे नहीं उठाए कोई, मैं उठूंगी नहीं। क्या कहे आप? तो ऐसी भी हालत आत्माओं की है, तो हम हमारे पर ये दया कृपा और आशीर्वाद ही कहेंगे, कहाँ हमारा पुरुषार्थ और कहाँ ये बुद्धि। हम यदि कहे कि हम ये कर रहे हैं और यूं कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, हम कौन है लिंबू टिंबू? उसकी दया है और उसकी ही कृपा है और उसकी ही आशीर्वाद है मंजू बहन जो यहाँ तक हम आते हैं। और थोड़ी ज्ञान की चर्चा, चाहे मनरस चाहे कनरस भी हो, मनरस में कनरस भी इंक्लूडेड है, कल कहा था। मनरस अर्थात केवल सुनना नहीं परंतु सुनकर फिर धारण करना, पर प्रथम स्टेप तो सुनना ही है ना। शास्त्रों में श्रवण मनन और निनिध्यासन ऐसे 3 स्टेप का है, पहले सुनना फिर उस पर मनन करना और फिर उसको धारण करना। ओम शांति। 1970 की जो मुरली है सबसे पहली मुरली है।